नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए, इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे हम दीनों पर तेरी महिमा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा एक बार नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर का दास सुलेमान किस रीति से अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर आगे चल रहा था और उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाने का कार्य किया। आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे कि मंदिर का निर्माण। मेरे मित्रों, सुलेमान अब अपने पिता दाऊद के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ता है कि परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाए। दूसरे इतिहास के पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया, इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझिए और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिये गिनती करके ठहराए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नक्शा सामने रखा जाता है और सुलेमान मंदिर बनाना आरंभ करता है, परंतु इस बात पर ध्यान दें कि सुलेमान का मंदिर बनाना उसके राज्य का एक भाग था जिस पर परमेश्वर अधिक जोर या विशेष ध्यान देते हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से वर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी वर्ताव कर। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि हिराम दाऊद से प्यार करता था और दाऊद भी हिराम से प्यार करता था और इसी आधार पर सुलेमान हिराम से अनुरोध करता है। और मैं सोचता हूं कि हिराम को सुलेमान के साथ कुछ समस्या थी जिसे हम आगे देखेंगे। वह अर्थात हिराम दाऊद के साथ बहुत उदार था, परंतु उसे सुलेमान के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ कठिनाई महसूस होती है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, देख मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए, इसराइल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि यह इसराइलियों के लिए सदा की विधि है। सहस्रकाल के समय में मंदिर के पुनः निर्माण और बलिदान का विरोध किया जाएगा, क्योंकि पशु बलि यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का प्रतीक है। तो पुनः सहस्रकाल में पशु बलि क्यों चढ़ाई जाएगी? उत्तर है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे लागू किया है, और यही उत्तर काफी है। मेरे प्रियो, वास्तव में वे सब कुछ अर्थपूर्ण होंगे, और ये एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हमें स्मरण कराएंगे। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 2:5 में आगे पढ़ते हैं, और जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। जी हाँ, हमारे अर्थात हम लोगों के दिनों में कौन सी चीज महान बनाती है? कौन एक मनुष्य को महान बनाता है? हमारे देश को कौन महान बनाता है? मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया को महान कौन बनाता है? यह परमेश्वर है जो सारी बातों को महान बनाता है। यही वह महान दृश्य है जिसे हम सब खो रहे हैं, अर्थात हम नहीं देख पा रहे हैं। प्रिय मित्रों, सुलेमान अपने पिता के निर्देशानुसार अब कमर कस चुका है कि परमेश्वर का भवन बनवाए, और वह कहता है, जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। दूसरे इतिहास के पुस्तक 2:6 में लिखा है, परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसके भवन बनाऊं? जी हाँ, वे बलिदान चढ़ाने के द्वारा ही परमेश्वर के निकट आते थे, और आप और मैं परमेश्वर के निकट आते हैं, तो वह केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही संभव है। यहाँ देखने योग्य महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि सुलेमान के मन में परमेश्वर क्या है, इसके बारे में कोई गलत धारणा नहीं थी, या इस बारे में कि परमेश्वर उस भवन में वास करेगा या नहीं। मेरे प्रियो, मैंने एक बार किसी धर्म विज्ञान के लेख को पढ़ा, उसने लिखा है कि सुलेमान जो कर रहा था वह यह था कि एक छोटा सा भवन बनाए कि परमेश्वर को संदूक में रखे, और उन मनुष्यों का यह विचार था कि परमेश्वर को संदूक में रखना चाहिए, वह वहां समा सकता है। परंतु मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सुलेमान के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, और न ही उन मनुष्यों की यह धारणा थी। वे आज के अधिकांश मनुष्यों से बहुत आगे थे, हमारी कलीसियाओं के सदस्यों से भी आगे। मेरे मित्रों, आज अधिकांश विश्वासी आराधनालय को परमेश्वर का घर कहते हैं, परंतु परमेश्वर घर में नहीं रहता है, न वह पहले कभी रहा है। मंदिर वास्तव में बलिदान चढ़ाने का स्थान था, वह परमेश्वर के निकट आने का स्थान था, अतः उस स्थान को उसके योग्य होना था। वह अति उत्तम रूप से सजा हुआ था, अति सुंदर था। उस युग की अन्य इमारतों की तुलना में वह विशाल नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि आप सुलेमान द्वारा निर्मित इस मंदिर को इफिसुस के डायना के मंदिर की तुलना में रखें, या पिरामिडों से उसकी तुलना करें, तो वह बहुत ही छोटा था, परंतु उसकी धन संपदा ने उसके आकार की कमी पूरी की। असीम सोना और चांदी जो उसमें लगा था। जी हाँ, आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास के पुस्तक 2:7 को। लिखा हुआ है, सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने चांदी पीतल लोहे और बैजनी लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो, और नक्काशी में भी जानता हो कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। मेरे मित्रों, उन्हें विदेशी से कुशल कारीगर बुलवाने पड़े थे, क्योंकि इसराइली परमेश्वर की इच्छा अनुसार खेती करने वाले लोग थे। यह बड़ी रोचक बात है कि आज भी इसराइली स्वदेश लौट रहे हैं तो भूमि से संबंधित ही हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, जो यरूशलेम को गए हुए थे, उसने कहा कि उसने उस क्षेत्र का भ्रमण किया और उसने पाया कि मृत सागर से भूमध्य सागर तक और यदि उसके सर्वोत्तम खेती को देखे तो इसराइल में है। उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं कि यदि कहीं ऐसी खेती उपजाऊ भूमि में हो जैसे ऐसे डुलोन की घाटी में है जहां हर्मगिदोन है, वह निश्चय ही एक संपन्न देश है। सुलेमान के युग में वहां कुशल कारीगर नहीं थे, अतः उन्हें हिराम से कारीगर बुलाने पड़े थे। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, फिर लबानोन से मेरे पास देवदार, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर। जी हाँ, दूसरे शब्दों में सुलेमान के कर्मियों को उनसे सीखना था। देवदार के ये वृक्ष लबानोन प्रसिद्ध देवदार थे। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 2 अध्याय के 9 पद में आगे पढ़ते हैं, मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा, वह विशाल तो नहीं परंतु महान अवश्य होगा। दूसरे इतिहास के पुस्तक 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं और 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। हम आगे चल करके देखेंगे कि सुलेमान द्वारा किए गए इस भुगतान में मन मुटाव हुआ था। दूसरे इतिहास के पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया है। फिर हुराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इसराइल का परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम अभी को भेजता हूँ। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, और वह इस व्यक्ति का विवरण सुनाता है। दूसरे इतिहास के पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, तब सुलेमान ने इसराइली देश के सब परदेशियों की गिनती ली, यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझिए, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले, और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिये नियुक्त किए। ध्यान दीजिए कि ये सहायक कर्मी थे जो साधारण श्रम का काम करेंगे। आगे अब हम देखेंगे 3 अध्याय में सुलेमान द्वारा मंदिर निर्माण कार्य का आरंभ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। मेरे मित्रों हम देख चुके हैं कि ओरनान का यह खलिहान वही स्थान था जहां सदियों पूर्व अब्राहम से कहा गया था कि वह इसहाक की बलि चढ़ाए। उसी पर्वतमाला पर यरूशलेम के बाहर गुलगुता खोपड़ी का स्थान है, वहीं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। दाऊद ने यह स्थान ओरनान से खरीद लिया था और वह आज भी मंदिर का स्थान है। मेरे मित्रों हम जो निर्माण कार्य से संबंधित नहीं है नक्शे और निर्माण सामग्री के वर्णन को रोचक नहीं पाएंगे, परंतु हम केवल उन कुछ महान तथ्यों को चुन लेंगे जो हम अन्य स्थानों से या अन्य स्थानों में व्यक्त किया गया नहीं पाते हैं। तो आइए आप मेरे साथ दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद को देखें। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसका यह ढब है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। मेरे मित्रों मंदिर मिलाप वाले तंबू से 2 गुना बड़ा था, 60 बाय 20 हाथ का, अर्थात 90 गुना 30 फुट। ये मंदिर के मुख्य भाग का क्षेत्रफल है। उसके साथ जुड़ी अनेक इमारतें थी। जब सब इमारतें बन गई तब वह बहुत प्रभावशाली दिखता था, परंतु मंदिर मिलाप वाले तंबू का केवल 2 गुना ही था। अब मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करूंगा जिन्हें हम देख चुके हैं और कुछ अभी देखना है। आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 पद। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पाँव के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। मेरे प्रियो, ये हैं करूब जो दया आसन को ढांके हुए थे। आपको स्मरण होगा कि मिलाप वाले तंबू में जिसे बनाने का निर्देशन मूसा को प्राप्त हुआ था उसमें परमेश्वर ने करूबों की लंबाई चौड़ाई नहीं बताई थी। वे परमेश्वर का प्रतीक थे जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई नापी नहीं जा सकती है, परंतु यहाँ पर उनका नाप दिया गया है और वे निसंदेह मिलाप वाले तंबू के करूबों से आकार में बहुत बड़े थे। जी हाँ, यह भ्रष्टता का संकेत है। वे ईश्वरत्व का क्षेत्रफल नाप रहे हैं जो असंभव है। मैं आपको फिर स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ वह क्या बात है जिस पर परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है, और वह राजाओं की पुस्तक में मानवीय दृष्टिकोण से आंकी नहीं गई थी। यह पर्दे की सुंदरता है। आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए। ध्यान दीजिए, पर्दा मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक है। परमेश्वर उस ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है। जब मसीह का क्रूसीकरण किया गया तब मंदिर का पर्दा फटकर 2 भाग हो गया था, क्योंकि वह मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक था। उस पर्दे के फटने का अर्थ था कि सब विश्वासियों के लिए केवल मसीह के बलिदान द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मार्ग खुल गया है। जी हाँ, इतिहास की इस पुस्तक में परमेश्वर इस पर्दे की सुंदरता पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है। जैसे कि उसने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे मित्रों, एक और वस्तु जिस पर हमें ध्यान देना है वह है स्तंभ। आइए हम देखें दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय के 15 पद में, और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। इसका अर्थ है कि ये स्तंभ मंदिर की तुलना में बहुत ऊंचे थे, अनुपात से लगभग बाहर। ये स्तंभ शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक थे। मेरे प्रियो, शक्ति और सौंदर्य 2 ऐसी बातें हैं जिन्हें आज का मनुष्य सोचता है कि उसने पा लिया है। हम अपनी शक्ति पर गर्व करते हैं, तथापि कानून व्यवस्था बनाए रखने में हम असमर्थ हैं। जहां तक सौंदर्य का प्रश्न है, आपने कहीं मॉडर्न आर्ट देखा होगा। आज बहुत से चित्रकार अपने चित्रों को बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। उसे देखकर शायद आप कहेंगे कि मैंने ऐसे चित्र कभी नहीं देखे, परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर शक्ति और सौंदर्य में रुचि रखता है। मंदिर के ये स्तंभ अत्यधिक प्रभावी थे। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में वह शक्ति और सुंदरता का विषय फिर लाएगा। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 12 पद में पढ़ते हैं, अर्थात 2 खंभे और गोलों समेत के कंगनियों जो खंभों के सिरों पर थी और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांपने के लिए जालियों की 2-2 पांती थी। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित कराता है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद में, फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए कि वह इन सांकलों का उल्लेख करता है। वे किसका प्रतीक थी? वे राष्ट्र की एकता का प्रतीक थी। सांकले उन सब मनुष्यों का प्रतीक थी जो विभिन्न गोत्रों के सदस्य थे, क्योंकि इन्हीं गोत्रों से राष्ट्र बना हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर संपूर्ण एकता में रुचि रखता है। आज हम परमेश्वर के जन इसे अनदेखा किए हुए हैं। आज हम हजारों वर्गों में विभाजित हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, नई नई संस्थाएं उभर रही हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि इससे प्रभु को सम्मान प्राप्त होता है या नहीं। नए नियम में प्रभु यीशु ने एकता का जो चित्रण किया है वह सांकलों से भी अधिक उत्तम है। यह एक देह है। उसने कहा कि उसकी कलीसिया एक देह है। देह में अनेक अंग होते हैं, कुछ पात्र सम्मान के होते हैं तो कुछ अपमान के, परंतु वे सब एक ही देह के सदस्य हैं। यह कलीसिया का चित्रण है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि वहां अनार भी थे, 100 अनार। हम यह भी पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 4:13 पद में लिखा है, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढांपने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांती बनाई। ध्यान दें, अनार फलवंत होने का प्रतीक है और उसका यहाँ यही महत्व भी है। मैं रंगों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पर्दा नीले और बैंगनी और लाल रंग के धागों से बारीकी मलमल का सा बुना हुआ है। नीला रंग आकाश का प्रतीक है, बैंगनी रंग राजसी है और लाल रंग यीशु के लहू द्वारा उद्धार का प्रतीक है। सफेद रंग पवित्र जीवन का प्रतीक है। ये सब रंग परमेश्वर की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, अध्याय 4 में मंदिर के सामान का विवरण है। पीतल की वेदी, हौद, 10 छोटे हौद, दीपदान, मेज आदि। तब पात्र, फावड़िये और कटोरे पीतल की वेदी मिलाप वाले तंबू में रखी गई वेदी से 4 गुना बड़ी थी। मंदिर में कुछ अतिरिक्त हौद भी थे और अन्य परिवर्तन तथा अतिरिक्त सामान भी थे। मेरे मित्रों, नई नई वस्तुओं और अतिरिक्त वस्तुओं ने मिलाप वाले तंबू की सादगी और मसीह के साधारण चिन्हों को घटा दिया था। मंदिर नहीं, मिलाप वाला तंबू ही प्रतीक रूप में काम में लिया गया है, जो इब्रानियों की पुस्तक में मसीह के व्यक्तित्व एवं कार्य को दर्शाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है। हम देखेंगे अध्याय 5 में, जिसका विषय है निर्मित भवन। आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास की पुस्तक 5:1-2 पद। लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाए वह सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। तब सुलेमान ने इसराइल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इसराइलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे उनको भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात शियोन से ऊपर लिवा ले आए। मेरे मित्रों, निर्माण का काम पूरा हो जाने पर वाचा का संदूक मंदिर में लाया गया। शियोन पर्वत के ऊपर है, जो मंदिर के स्थल से अधिक दूर नहीं है। मेरे मित्रों, हम उस स्थान को भली भांति नहीं पहचानते जहां दाऊद ने वाचा का संदूक रखा था, परंतु निश्चय ही वह दाऊद नगर में था जो सियोन पर्वत पर है। वह बड़ा स्थान भी नहीं है और मंदिर से दूर भी नहीं है। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम इस अध्ययन में देखते हैं कि सुलेमान ने उस कार्य को किया जिसे उसके पिता ने करने की इच्छा रखी थी। उसने परमेश्वर के लिए मंदिर का निर्माण किया और उस संदूक को उस मंदिर तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने कुछ कार्यों को रखा है। मुझे और आपको चाहिए कि हम भी परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक उसके वचन को नहीं सुना है। जी हाँ, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार सुलेमान ने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, क्या आज आप और मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे? मेरे मित्रों, आइए आज हम निर्णय लें और परमेश्वर से सहायता मांगे। और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही नई बातों को सीखा है। तो मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले अध्ययन में भी अवश्य नई बातों को सीखेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, प्रभु के वचन में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ईशु के